एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में, लेकिन एक खास नजरिए से, नैतिकता के नजरिए से।
नमस्ते। और ये विषय तो मतलब आजकल हर तरफ छाया हुआ है ना?
हाँ बिल्कुल, तकनीकी खबरों से लेकर हमारे दफ्तरों और घरों तक।
और इसे ठीक से समझने के लिए हम आज मार्क कोकेलबर्ग की किताब एआई एथिक्स को अपना गाइड बना रहे हैं। ये एमआईटी प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है जो जानी जाती है मुश्किल विषयों को आसान बनाने के लिए।
और देखिए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि एआई अब कोई दूर की कौड़ी नहीं रही, ये हमारी जिंदगी का अब हिस्सा बन चुकी है। अब हेल्थ केयर देख लीजिए, नौकरी, मनोरंजन, यहाँ तक कि जस्टिस सिस्टम में भी।
सही बात है।
ये सिर्फ कोड या मशीन का सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे समाज के भविष्य का सवाल है।
बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस शख्स से मिलते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, मार्क कोकेलबर्ग।
हाँ बताइए इनके बारे में।
वो वियना विश्वविद्यालय में मीडिया और टेक्नोलॉजी के दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं।
और दिलचस्प बात यह है, जैसे आपने कहा, कि उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं, फिलॉसफी का है।
जी हाँ।
तो ये उन्हें एआई को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा देता है ना। वो सिर्फ मशीन कैसे काम करती ये नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे के गहरे नैतिक सवालों को कोरेदते हैं।
हाँ, और यही उनकी खासियत है। वो तकनीक को मतलब अरस्तु से लेकर आज के विचारकों तक सदियों पुरानी जो नैतिक बहसें चली आ रही हैं उनके तराजू पर तौलते हैं। उन्होंने रोबोट एथिक्स और एआई पर काफी काम किया है।
और वो नैतिकता को कोई रुकावट नहीं मानते कि ये जो चुनौती है, ये हमें कैसे बेहतर इंसान और एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बना सकती है।
क्या बात है। मतलब सवाल सिर्फ एआई को नैतिक बनाने का नहीं,
बल्कि इस प्रोसेस में खुद को नैतिक बनाने का भी है।
बिल्कुल। अच्छा, अब जरा किताब पर आते हैं। एआई एथिक्स का सार क्या है, मतलब मोटी मोटी बात क्या है इसमें?
देखिए, ये किताब एआई से जुड़े जो सबसे जरूरी नैतिक मुद्दे हैं ना, उनका एक संक्षिप्त पर गहरा परिचय देती है। और ये सबके लिए है, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, डेवलपर्स या हम जैसे आम लोग जो समझना चाहते हैं कि भाई ये एआई हमारे समाज पर क्या असर डाल रहा है।
और किताब का जो सबसे बड़ा तर्क है वो शायद ये है कि एआई नैतिकता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है जिसे किसी स्मार्ट एल्गोरिथम से ठीक कर दिया जाए।
अच्छा,
एआई एक आईने की तरह है।
आईना? किस तरह का आईना?
इस मायने में कि एआई अक्सर हमारे समाज में जो पहले से मौजूद अच्छाइयां और बुराइयां हैं, खासकर जो पूर्वाग्रह हैं, जो ताकत का असंतुलन है, उसे दिखाता है और कई बार तो उसे बढ़ा भी देता है।
जैसे आईने में अपना अक्स दिखता है, वैसे एआई में हमारे समाज का।
बिल्कुल।
तो ये किताब हमें किन मुद्दों से रूबरू कराती है? यात्रा कहाँ से शुरू होती है?
सफर शुरू होता है आज की एआई एप्लीकेशंस की जो सीधी चुनौतियां हैं उनसे, जैसे एल्गोरिदम में छिपा हुआ भेदभाव, हमारी प्राइवेसी पर जो हमला हो रहा है, और ये तय करने की मुश्किल कि जब कोई एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन हो।
वो जिम्मेदारी वाली बात।
हाँ, और फिर ये दायरा थोड़ा और बढ़ता है।
कैसे?
फिर बात होती है बड़े सामाजिक और आर्थिक असर की, जैसे ऑटोमेशन से नौकरियों का भविष्य क्या होगा, या कैसे कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक कंपनियों के हाथ में जरूरत से ज्यादा शक्ति आ रही है।
पावर कॉन्सेंट्रेशन।
जी, और अंत में ये हमें गहरे दार्शनिक सवालों पर सोचने को उकसाती है कि एआई हमारे रिश्तों को, हमारी जिंदगी को और यहाँ तक के इंसान होने के मायने को कैसे बदल रहा है।
लेकिन इसे प्रॉब्लम गिनाकर नहीं छोड़ देती?
नहीं नहीं, ये समाधान और नियम कानून के जो ढांचे हो सकते उन पर भी बात करती है। मकसद ये है कि पढ़ने वाला इस जरूरी बहस में सोच समझकर हिस्सा ले सके।
चलिए, अब कुछ खास पहलुओं में और गहरे उतरते हैं। पहला बड़ा मुद्दा उठाते हैं, एआई नैतिकता आखिर है क्या और आज ये इतनी जरूरी क्यों हो गई है।
हाँ, तो कोकिलबर्ग शुरुआत में ही ये साफ करते हैं कि भाई तकनीक जिस रफ्तार से भागी है, हमारे जो नैतिक और कानूनी कायदे हैं वो थोड़े पीछे रह गए हैं, एक गैप सा बन गया है। और एआई नैतिकता सिर्फ कंप्यूटर वैज्ञानिकों का ही काम नहीं है, इसमें फिलॉसफी, लॉ, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स सब शामिल हैं। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है।
और एक बहुत अहम बात वो कहते हैं कि नैतिकता कोई बाद में चिपकाने वाली चीज नहीं है।
सही का, आफ्टर थॉट नहीं है।
हाँ, इसे एआई बनाने की पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल शुरू से आइडिया से लेकर उसके इस्तेमाल और निगरानी तक शामिल होना चाहिए।
क्योंकि ये एआई सिस्टम सिर्फ टूल नहीं होते, वे अपने बनाने वालों के मूल्यों और हाँ, उनके पूर्वाग्रहों को भी साथ लेके चलते हैं।
और ये पूर्वाग्रहों वाली बात हमें सीधे अगले मुद्दे पर ले आती है, गोपनीयता और निगरानी, प्राइवेसी और सर्वेलेंस। शायद AI का ये असर हम सबसे ज्यादा महसूस करते हैं ना?
हाँ, ये तो है, रोजमर्रा की बात है।
और कोकिलबर्ग याद दिलाते हैं कि प्राइवेसी का मतलब सिर्फ बातें छुपाना नहीं है, ये हमारी आजादी, हमारी गरिमा और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। वो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म का जिक्र करते हैं।
हाँ, शोशाना जुबोफ का कॉन्सेप्ट। जी, यानी वो बिजनेस मॉडल जो हमारे डेटा से हमारे व्यवहार को समझने और फिर उसे बदलने की कोशिश करता है।
लेकिन AI वाली निगरानी पुरानी जासूसी से अलग कैसे है? मतलब क्या फर्क है?
फर्क कई हैं। एक तो इसका पैमाना बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया। दूसरा, ये अक्सर अदृश्य होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, कब इस्तेमाल हो रहा है।
और शायद सबसे खतरनाक बात,
हाँ सबसे खतरनाक, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है। ये हमारे डेटा के आधार पर हमें कैटेगराइज कर सकती है, जिसे वो सोशल सॉर्टिंग कहते हैं। सोचिए, किसी को लोन मिलेगा या नहीं, कोई नौकरी के लिए फिट है या नहीं, ये उसका AI प्रोफाइल तय कर सकता है।
इसके उदाहरण तो हम रोज देख रहे हैं। चेहरे पहचानने वाली तकनीक का पुलिस इस्तेमाल कर रही है, कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसा स्कैंडल हमने देखा, या कैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारी हर क्लिक पर, हर पसंद नापसंद पर नजर रखते हैं।
बिल्कुल, और ये साफ दिखाता है कि एक आम इंसान और जो बड़ी ताकतें हैं, कंपनियां या सरकारें, उनके बीच शक्ति का संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है।
गोपनीयता से जुड़ा एक और गंभीर मसला, पूर्वाग्रह, भेदभाव और निष्पक्षता। ये जो आईने वाली बात थी,
हाँ हाँ,
वो यहाँ सबसे ज्यादा दिखती है कि कैसे AI समाज के पुराने अन्यायों को और पक्का कर सकता है, उन्हें बढ़ा सकता है।
मतलब जिसे एल्गोरिदम बायस कहते हैं, वो सिर्फ कोड की गड़बड़ी नहीं है, ये कहना चाह रही हैं आप?
बिल्कुल नहीं, वो अक्सर उस डेटा से पैदा होता है जिस पर AI को सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। अगर डेटा में ही मान लीजिए नस्ल, लिंग, जाति या वर्ग को लेकर भेदभाव है, तो AI भी वही सीख लेगा।
जैसे वो उदाहरण देते हैं कि अगर किसी कंपनी ने हमेशा पुरुषों को ज्यादा नौकरी दी
और उसी पुराने डेटा पर AI को ट्रेन किया,
तो वो AI भी पुरुषों को ही तरजीह देगा, है ना?
हाँ, तो फिर ये जो दावा किया जाता है कि एल्गोरिथम ऑब्जेक्टिव होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, ये तो खोखला हुआ।
काफी हद तक कोकिलबर्ग ये भी बताते हैं कि निष्पक्षता या फेयरनेस की भी कोई गणितीय परिभाषा नहीं है जो हर स्थिति में हर नैतिक सिद्धांत पर खरी उतरे।
अच्छा,
कैसे?
कैसे?
जैसे क्या ज्यादा जरूरी है, सबके साथ एकदम एक जैसा बर्ताव करना, या जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं उनके साथ थोड़ा अलग बर्ताव करना ताकि बराबरी आ सके। ये नैतिक चुनाव है, इनके कोई आसान तकनीकी जवाब नहीं है।
इसके कुछ असल दुनिया के उदाहरण हैं किताब में?
हाँ, कई हैं, जैसे अमेरिका की न्याय व्यवस्था में इस्तेमाल हुआ कॉम्पास एल्गोरिदम। उस पर आरोप लगा कि वो अश्वेत लोगों के दोबारा अपराध करने की संभावना को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। या चेहरे पहचानने वाले सिस्टम जो गोरे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं और अश्वेत लोगों के चेहरों को पहचानने में ज्यादा गलतियां करते पाए गए हैं, ये दिखाता है कि कैसे AI भेदभाव को ऑटोमेट कर सकता है, अनजाने में ही सही।
ये वाकई चिंताजनक है, और ये हमें एक और बहुत मुश्किल सवाल की तरफ ले जाता है, जिम्मेदारी और जवाबदेही, जिसे कोकिलबर्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप यानी जिम्मेदारी का अंतर कहते हैं। ये क्या बला है?
सोचिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, या कोई AI डायग्नोस्टिक टूल है, वो गलत तशखीस कर देता है, नुकसान हो गया, अब जिम्मेदार कौन है?
हाँ, किसने कोड लिखा वो, या जिसने कार बनाई वो कंपनी, या जिसने उसे इस्तेमाल किया वो मालिक, या क्या AI खुद?
यही तो उलझन है। हमारी जो जिम्मेदारी की पारंपरिक समझ है, वो मानवीय इरादे से जुड़ी होती है कि किसी ने जानबूझकर कुछ किया या नहीं। पर AI के मामले में, खासकर जब वो खुद सीख रहा हो, फैसले ले रहा हो, तो ये कैसे तय होगा?
और ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, इन जटिल सिस्टम्स में जहां फैसले कई अलग अलग हिस्सों की आपसी क्रिया से होते हैं, किसी एक व्यक्ति या संस्था को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये खतरनाक है, क्योंकि इससे न्याय मिलना मुश्किल हो सकता है,
और शायद सिस्टम को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी कम हो सकती है।
सही बात है, अगर किसी की जवाबदेही तय ही नहीं होगी तो सुधार कौन करेगा?
किताब में वो मशहूर ट्रॉली प्रॉब्लम का भी जिक्र है ना?
हाँ, लेकिन उसे एक दिमागी पहेली की तरह नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि कैसे AI सिस्टम को असल दुनिया में ऐसे मुश्किल नैतिक चुनाव करने पड़ सकते हैं जहां हर विकल्प में किसी ना किसी का नुकसान है। सेल्फ ड्राइविंग कार को किसे बचाने के लिए प्रोग्राम किया जाए?
ये जिम्मेदारी के सवाल को और गहरा कर देता है।
इन सीधी चिंताओं से आगे बढ़कर किताब एआई के जो बड़े सामाजिक आर्थिक प्रभाव है उन पर भी नजर डालती है, जैसे काम का भविष्य, हमारा समाज और शक्ति का खेल।
हाँ, ये बहस के क्या रोबोट हमारी नौकरियां खा जाएंगी, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कोकिलबर्ग सिर्फ जॉब लॉस की बात नहीं करते, बल्कि ये भी देखते हैं कि काम का मतलब कैसे बदल रहा है, असमानता कैसे बढ़ सकती है,
और वो एल्गोरिथम द्वारा मैनेज किए जाने का अनुभव कैसा होता है।
हाँ, उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है। तो क्या नौकरियां सच में खत्म हो जाएंगी? किताब क्या कहती है?
देखिए, शायद कुछ तरह की नौकरियां खत्म हो और कुछ नई तरह की पैदा भी हो, लेकिन असली चिंता ये है कि अगर सही नीतियां नहीं बनी, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो ऑटोमेशन का फायदा शायद कुछ ही लोगों को मिलेगा, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियों के मालिक, और बाकी बहुत सारे लोगों के लिए अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ेगी।
और इसमें शक्ति के केंद्रीकरण यानी पावर कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल है?
बहुत बड़ा रोल है। शक्तिशाली एआई बनाने के लिए भारी संसाधन चाहिए, पैसा, बहुत सारा डेटा, टॉप के टैलेंट, ये सब कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक कंपनियों और कुछ देशों के पास ही है।
तो इससे ताकत उनके हाथों में सिमट रही है।
हाँ, और ये लोकतंत्र और बराबरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब कुछ ही लोग भविष्य को आकार देने वाली तकनीक को नियंत्रित करते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये सबके हित में होगा।
अब तक हमने समस्याओं और जोखिमों की काफी बात की, क्या किताब एआई के सकारात्मक पहलू या जो गहरे मानवीय सवाल हैं उन पर भी बात करती है?
बिल्कुल, एक पूरा सेक्शन इसी पर है, एआई और अच्छा जीवन या द गुड लाइफ। कोकिलबर्ग कहते हैं कि एआई नैतिकता का अंतिम सवाल सिर्फ नुकसान रोकने का नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम इस तकनीक से कैसा समाज और कैसी जिंदगी बनाना चाहते हैं।
ये तो एक अलग ही दिशा है, मतलब फिलोसॉफिकल हो गया थोड़ा। इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये सोचना कि एआई के साथ हमारी बातचीत हमें इंसानों के तौर पर कैसे बदल रही है, हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे अकेले बुजुर्गों की देखभाल के लिए साथी रोबोट का इस्तेमाल कितना सही है कितना गलत, हमारी रचनात्मकता पर क्या असर हो रहा है, जैसे एआई से बनी कला या संगीत,
और सबसे बढ़कर ये हमारे इंसान होने के एहसास को कैसे छू रही है।
जी, तकनीक सिर्फ एक बाहरी टूल नहीं है, ये हमें अंदर से गढ़ती भी है। ये हमारे अनुभव, हमारी सोचने की आदतें और हमारे मूल्यों को आकार देती है।
एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या फैसले लेने के लिए एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाने से हमारी अपनी नैतिक तर्क शक्ति, हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी?
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यही वो सद्गुण नैतिकता यानी वर्चू एथिक्स का जिक्र करती हैं, जो सिर्फ नियमों को मानने पर नहीं बल्कि अच्छे चरित्र, अच्छे मूल्यों को विकसित करने पर जोर देती है। क्या एआई हमें नैतिक रूप से आलसी बना देगा?
किताब में सुपर इंटेलिजेंस और भविष्य के खतरों जैसी थोड़ी दूर की स्पेक्युलेटिव बातों पर भी चर्चा है।
हाँ है, लेखक मानते हैं कि ये अभी काफी हद तक अटकलों का क्षेत्र है, लेकिन वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान एआई और उससे जुड़े जो अस्तित्वगत जोखिम है उन पर भी चर्चा करते हैं,
जैसे निक बोस्ट्रम वगैरह बात करते हैं।
हाँ, उन्हीं विचारकों के तर्क कि अगर ऐसा एआई हमारे लक्ष्यों से भटक गया या हमारे काबू से बाहर हो गया तो ये मानवता के लिए खतरा बन सकता है।
लेकिन कोकिलबर्ग का खुद का क्या नजरिया है इस पर?
उनका नजरिया काफी संतुलित है। वो कहते हैं कि भाई, लंबे समय के जोखिमों पर सोचना समझदारी है, लेकिन हमें सिर्फ भविष्य के साइंस फिक्शन जैसे डरावने सपनों में नहीं खोए रहना चाहिए।
क्यों?
क्योंकि ऐसा करने से हम आज के एआई की जो असली और तात्कालिक समस्याएं हैं, जैसे भेदभाव, निगरानी, जिम्मेदारी का अंतर, उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। उनका मानना है कि आज की नैतिकता पर काम करना ही कल के सुरक्षित भविष्य की नींव रखेगा।
तो फिर इन सब चुनौतियों से निपटने का रास्ता क्या है? शासन, नियम कानून, इस पर किताब क्या कहती है? क्या कोई समाधान है?
देखिए, कोकिलबर्ग साफ कहते हैं कि सिर्फ कंपनियों पर छोड़ देना कि वो खुद ब खुद नैतिक हो जाएंगी, ये काफी नहीं है।
मतलब सेल्फ रेगुलेशन काफी नहीं है?
हाँ, सिर्फ दिखावटी एथिक्स बोर्ड बनाने से, जिसे वो एथिक्स वॉशिंग कहते हैं, या सिर्फ कोई तकनीकी समाधान ढूंढने से, एथिक्स इन अ बॉक्स, काम नहीं चलेगा। ये मुद्दे उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं।
तो फिर क्या चाहिए?
एक मिलाजुला प्रयास चाहिए। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, इसमें सरकारें हों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हों, कंपनियां हों, सिविल सोसाइटी हो और आम जनता, सबको मिलकर काम करना होगा
और अलग अलग तरह के नियम बनाने होंगे।
जी, कुछ सख्त कानून, कुछ नरम गाइडलाइंस। पारदर्शिता बहुत जरूरी है कि हमें पता चले AI कैसे काम कर रहा है। ऑडिटेबिलिटी जरूरी है, यानी सिस्टम की एक स्वतंत्र रूप से जांच हो सके।
और सबसे जरूरी शायद ये है कि इस पर खुली लोकतांत्रिक बहस हो।
बिल्कुल, किताब का निचोड़ यही है कि कोई आसान बना बनाया जवाब नहीं है। हमें जिम्मेदार इनोवेशन की एक संस्कृति बनानी होगी और लगातार ये चर्चा करनी होगी कि हम AI के साथ कैसा भविष्य चाहते हैं। आखिरी जिम्मेदारी हम सबकी है, सिर्फ एक्सपर्ट्स की नहीं।
इस पूरी चर्चा से कुछ बातें मेरे जहन में एकदम अटक गई हैं। पहली तो वही आईने वाली बात, AI हमारे समाज का आईना है। ये खुद से कोई नया पूर्वाग्रह नहीं बनाता, हमारे समाज में जो पहले से मौजूद है उसी को दिखाता है और अक्सर बढ़ा देता है। अगर AI में भेदभाव दिख रहा है तो हमें पहले अपने समाज को देखना होगा।
सही बात है। सोचिए, भारत में जाति या लिंग आधारित पूर्वाग्रह डेटा में कैसे घुस सकते हैं और फिर AI उसे कैसे पक्का कर सकता है।
दूसरी बड़ी बात मेरे लिए ये है कि नैतिकता सिर्फ कोड का खेल नहीं है। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई फिक्स हो। निष्पक्षता, न्याय जैसे सवालों का जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें दर्शन, समाजशास्त्र, कानून, इन सबको साथ लाना होगा।
हाँ, जैसे किसे प्राथमिकता दें, एफिशिएंसी को या बराबरी को? इसका कोई एक सही एल्गोरिदम नहीं हो सकता, ये एक वैल्यू जजमेंट है।
तीसरा अहम मुद्दा वो जिम्मेदारी का अंतर है। जब ऑटोमेटिक सिस्टम गड़बड़ करते हैं तो किसी एक को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये न्याय के लिए एक बड़ा खतरा है। सोचिए, ऑटो पायलट पर हुई दुर्घटना का दोषी कौन है? हमें ऐसे सिस्टम बनाने से बचना होगा जो जवाबदेही को ही धुंधला कर दें।
और चौथा नजरिया जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, सिर्फ नुकसान से बचाव नहीं, अच्छे जीवन का सवाल। नैतिकता का मतलब सिर्फ बुराई रोकना नहीं है, बल्कि ये सोचना भी है कि AI हमारी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे आपसी जुड़ाव, हमारी स्वायत्तता को कैसे बढ़ा सकता है।
और आखिर में शायद सबसे जरूरी, AI की राजनीति और ताकत का खेल। ये नहीं भूलना चाहिए कि AI सिर्फ तकनीक नहीं, ये जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का स्रोत भी है। अगर ये शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट गई तो असमानता बढ़ेगी और लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए AI नैतिकता की लड़ाई कहीं ना कहीं सत्ता के सही बंटवारे की लड़ाई से भी जुड़ी हुई है।
ये बिल्कुल सही मुद्दे उठाए आपने। अब सवाल ये है कि इन गहरी बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? एक आम इंसान के तौर पर क्या किया जा सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो AI से जुड़ी जो खबरें आती हैं उन्हें थोड़ा क्रिटिकली देखें। आंख मूंद कर यकीन न करें, सवाल पूछें, इसे किसने बनाया, किस डेटा पर सिखाया गया, इससे फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे हो सकता है।
मीडिया लिटरेसी।
हाँ, दूसरा, अपने पर्सनल डेटा को लेकर थोड़े ज्यादा सावधान रहें, प्राइवेसी सेटिंग्स को समझें, एडजस्ट करें। जो मुफ्त की सेवाएं हैं उन पर थोड़ा शक करें कि कहीं कीमत हमारा डेटा तो नहीं। और जहां मौका मिले AI से जुड़े मसलों पर जो सार्वजनिक बहस हो रही है उसमें हिस्सा लें, अपनी आवाज उठाएं।
और जो लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, उनके लिए क्या सुझाव है?
उनके लिए सबसे बड़ा मंत्र है एथिक्स बाय डिजाइन। यानी जब आप कोई चीज बना रहे हैं उसी समय शुरू से ही नैतिक सवालों को ध्यान में रखें। खुद से पूछें, इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है? क्या ये सबके लिए बराबर काम करेगा? क्या हमारा ट्रेनिंग डेटा समावेशी है?
और सिर्फ तकनीकी निष्पक्षता से आगे बढ़कर सोचना।
हाँ, एल्गोरिदम के सामाजिक असर को समझना। अपनी टीम में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, शायद समाज वैज्ञानिकों या नैतिकतावादियों को भी शामिल करना, और अपनी कंपनी के अंदर भी नैतिक प्रैक्टिसेस के लिए आवाज उठाना।
और जो बिजनेस लीडर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स, उनके लिए
सबसे जरूरी है एथिक्स वॉशिंग से आगे बढ़ना। सिर्फ दिखावे के लिए एथिक्स बोर्ड बना देना काफी नहीं है, असली संसाधन लगाने होंगे, पारदर्शिता लानी होगी
और मजबूत नियम कानून बनाने होंगे।
बिल्कुल, ऐसे नियम जो पारदर्शिता अनिवार्य करें, एल्गोरिदम का स्वतंत्र ऑडिट हो सके, और अगर AI से कोई नुकसान होता है तो उसकी स्पष्ट जवाबदेही तय हो।
और हाँ, जनता का विश्वास जीतने के लिए लोगों को इस बारे में शिक्षित करना और उनकी राय सुनना बहुत जरूरी है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि AI नैतिकता किसी एक ग्रुप की, इंजीनियरों या दार्शनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमें सक्रिय रूप से यह सवाल पूछना होगा, ये तय करना होगा कि हम तकनीक का उपयोग कैसे करना चाहते हैं।
हाँ, और वो आईने वाली बात मुझे बार बार सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे ये तकनीक असल में हमें हमारे ही समाज की, हमारी अपनी कमियों की हकीकत दिखा रही है। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि सबसे कठिन सवाल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि खुद हमारे बारे में है। AI हमें अपने मूल्यों को स्पष्ट करने और ये तय करने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम वास्तव में कैसा भविष्य चाहते हैं। और किताब का ये पहलू कि नैतिकता सिर्फ नुकसान रोकने तक सीमित नहीं, बल्कि अच्छा जीवन बनाने की दिशा में भी होनी चाहिए, ये मुझे बहुत प्रेरणादायक लगा। ये एक उम्मीद जगाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।